हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरमान ठाकुर का ऐसा पागलपन देखकर ज़ोया कांप से गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया। उस पहरेदार ने पीछे से अरमान ठाकुर के सिर में ज़ोर से वार किया। वार होते ही अरमान ठाकुर तेज़ आवाज़ से चिल्ला उठा, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। वो जल्दी ही बेहोश हो गया। ज़ोया ने अरमान ठाकुर को उसके कॉलर से पकड़कर उसी बिस्तर पर लिटा दिया जहां वो पिछले 24 घंटों से था। ज़ोया कुछ देर अरमान ठाकुर को देखती रही, फिर उसकी नज़र अरहम ठाकुर पर पड़ी। अरहम ठाकुर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। अरहम के साथ साथ मेहर ठाकुर भी कभी अरमान को, कभी ज़ोया को देख रही थी। उन दोनों में ज़ोया से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेहर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई थी और अरहम ठाकुर आंखें फाड़कर ज़ोया को देख रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़ोया इतनी खतरनाक हो सकती है। वो केवल मुंह खोले ज़ोया का ये रूप देख रहा था। वहीं ग़ज़ाला जी अपनी बहू को इतना मजबूत और शक्तिशाली देखकर चौंक गई थीं। उनमें ज़ोया को कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही। वो सोचने लगी, इस दुबली पतली लड़की ने अरमान जैसे मस्क्युलर आदमी को एक झटके में उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया तो ये कोई आम लड़की नहीं हो सकती। जल्दी ही उन लोगों की ज़ोया के बारे में राय बदल गई। किसी में भी ज़ोया के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही। ज़ोया सब पर नज़र डालती हुई वहां से निकल गई। उसे अपने अगले शिकार पर जाना था। उसका अगला शिकार राजवीर सिन्हानिया था। ज़ोया ने राजवीर सिन्हानिया के लिए अलग अलग तरीके के प्लान बना रखे थे। ज़ोया अच्छी तरह जानती थी कि राजवीर सिन्हानिया आज भी उसी अपार्टमेंट में रहता था जहाँ वो खुद रहती थी। इसलिए जल्दी ही ज़ोया ने अपनी गाड़ी का रुख राजवीर की ओर करवा लिया। वहीं राजवीर आराम से अपने सोफे पर बैठा ज़ोया को याद कर रहा था। ज़ोया ने जो कुछ भी किया था वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जब से उसे पता चला था कि ज़ोया ने अरमान और मेहर ठाकुर की हालत बहुत ख़राब कर दी थी और उन्हें पीट पीट कर अस्पताल पहुँचा दिया था, तब से राजवीर की मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं गायब हुई थी। कहीं ना कहीं राजवीर को लग रहा था कि ज़ोया ने सभी को सबक सिखाया था, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब साफ था, वो राजवीर को आज भी अपना दोस्त मानती थी। राजवीर के लिए उसके मन में कोई ना कोई भावना थी, इसीलिए उसने राजवीर को कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद राजवीर सिन्हानिया के घर की डोरबेल बजी। इस वक्त किसी का आना उसे बहुत नागवार लगा, क्योंकि वो ज़ोया के ख्यालों में खोया हुआ था। जब से उसने ज़ोया का वेस्टर्न लुक देखा था तब से वो उस पर मरमिटा था। उसने सोच लिया था कि वो ज़ोया को अपना बनाएगा, और ज़ोया जो बार बार खुद को ज़ोया अवीर सिंह राठौर कह रही है उसके बारे में सच्चाई पता लगाएगा। हो सकता है ज़ोया ने अभी तक शादी ना की हो। अगर उसने शादी की होती तो उसका पति उसके साथ होता। हो सकता है ज़ोया सिर्फ नाटक कर रही हो। अपनी सोच में गुम राजवीर सिन्हानिया ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने देखा, कई काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। सबके चश्मे पहने हुए थे और वे दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे। कुछ पल उन्हें देखने के बाद राजवीर की नज़र सफ़ेद कोट पैंट में आती हुई ज़ोया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। ज़ोया बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ोया ने गले में हल्की सी सफ़ेद चेन पहनी थी जिसमें एक हल्का मोती था। उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और वाइट कोट पैंट पहना हुआ था। उसके नीचे वाइट शूज़ थे। ज़ोया का ये स्टाइल बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जैसे ही राजवीर ने ज़ोया को देखा वो उसे देखता ही रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके बारे में वो सोच रहा था वो अचानक उसके सामने आ जाएगी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ोया को देखकर वो कैसे रिएक्ट करे। तभी ज़ोया उसके करीब आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर सिन्हानिया, क्या आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? जैसे ही ज़ोया ने ये कहा राजवीर हैरानी से उसे देखने लगा और जल्दी से उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। ज़ोया जैसे ही घर में गई उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सब कुछ याद करने के बाद वो स्टाइल से सोफे पर बैठ गई। उसी सोफे पर जहां थोड़ी देर पहले राजा की तरह राजवीर बैठा था, अब रानी की तरह ज़ोया बैठी हुई थी। वो उस सोफे पर बहुत ही कमाल और स्ट्रांग पर्सनैलिटी लग रही थी। ज़ोया की पर्सनैलिटी देखकर राजवीर में उसके सामने जाकर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। वो उसके सामने खड़ा हो गया। तब ज़ोया ने उसे खड़ा देखा तो बोली, अरे अरे मिस्टर सिन्हानिया, आप क्यों खड़े हुए हैं? प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, आप ही का घर है। ज़ोया के कहने पर राजवीर थोड़ा शर्मा गया। फिर जल्दी ही वो ज़ोया के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तब ज़ोया ने कहा, मिस्टर सिन्हानिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे और आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं यहाँ आपकी मदद लेने आई हूँ। जैसे ही ज़ोया ने ये कहा राजवीर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी पावरफुल लेडी को भी किसी की मदद की जरूरत हो सकती है। जोया की बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ हाँ जोया, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और प्लीज जो भी मुझसे गलती हुई थी प्लीज उसे माफ कर देना। मुझे पूरी उम्मीद है तुम वो गलती माफ कर दोगी, और मेरी कितनी मदद की थी वो सब तुम याद रखोगी। उस वक्त मैं बहक गया था, अरमान ठाकुर ने मुझे बहला फुसला लिया था, राजवीर अपने आप ही आगे बोलने लगा। तब जोया ने अपना हाथ बढ़ाकर राजवीर को बोलने से रोक दिया और कहा, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इसीलिए नहीं आई हूँ कि तुम अपनी गलती मान सको, मैं तुमसे मदद के लिए आई हूँ और तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गए। डोंट वरी, मैं अब पहले वाली जोया नहीं हूँ, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को अलग रखती हूँ। जोया की बात सुनकर राजवीर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहा। तब राजवीर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तब जोया ने राजवीर को कुछ समझाना शुरू किया। जैसे जैसे जोया राजवीर को समझा रही थी, राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आते जा रही थी। वो जल्दी ही खड़ा होकर खुशी से उछलने लगा और कहने लगा, वो काम आप मुझसे करवाना चाहती हैं ये मदद नहीं, इसमें मुझे अपना पार्टनर समझो, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब कुछ भूलकर मुझे फिर से अपना दोस्त बना लेंगी। राजवीर ने एक बार फिर जोया के आगे चापलूसी करनी शुरू कर दी थी। मौका देखते ही उसने फिर से जोया से दोस्ती करने की बात कह दी। तभी जोया स्टाइल से खड़ी हुई और राजवीर की ओर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। राजवीर खुशी से घूमने लगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोया ऐसा भी कुछ कह सकती है, वो खुशी के मारे झूमने लगा।